इसलिए अब इसी इशू का एक और अहम इशू अल्लाह सुब्हान तआला आगे बता रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर की जरूरत है। और वो क्या है कि जब ये सारा मामला हो गया, लिखने वाला लिखवा रहा है और सब कुछ अदल और इंसाफ के साथ हो गया, अब क्या होगा, वस्तशहिदु शहीदैन, और गवाह बना लो दो गवाह। आप अगर शुरू से साथ थे ना मेरे, बीच में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स तो बहुत सारे दिए, लेकिन जहां मैंने आपको बोला था ना कि कर्ज लेने देने की तीन शरायत हैं, तो ये उसमें से तीसरी है। हमारी पहली थी इलाज अल मुसम्मा, दूसरी थी लिखो, तीसरी अब आ गई है वस्तशहिदु शहीदैन, दो गवाह मुकर्रर कर लो। ये कब होंगे, मैंने आपको शुरू में अर्ज कर दिया कि ये सारी बेस्ट कंडीशंस हैं, फर्ज नहीं है लेकिन एक्सीलेंट एंड रिकमेंडेड सिचुएशंस हैं। खास तौर पे दो गवाह कब होंगे, जब लिखने का इंतजाम भी नहीं हो रहा और तहरीर भी काफी नहीं है, यानी किसी भी तरह से किसी दूसरे को इस डील में शामिल कर लो, ये मुराद है। ठीक है, तो दो गवाह बना लो। अच्छा, किन में से, मिर रिजालिकुम, आपस के, यानी रिजालिकुम के अब दो तीन मुख्तलिफ मानी है। अगर कोई ऐसा सीरियस इशू है जिसका दीन से ताल्लुक है, तो रिजालिकुम से मुराद है कि मुसलमानों में से दो गवाह बनाओ। और अगर कोई लेन देन इस तरह का जाती नौयत का है, तो फिर उस बंदे को गवाह बनाओ जो दोनों पार्टियों को जानता हो। बहन को तो भाई को तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन बाज दफा मामला ऐसा होता है कि मुलाजिम और घर वाली बीबी का होता है, तो फिर किसी ऐसी तीसरी सिस्टर को बुला लो जो तुम्हारी मासी को भी जानती है और तुम्हें भी जानती है, ये मुराद है। ठीक है, दो मर्दों में से। अच्छा, यहाँ पे मेरे रिजालिकुम के बाद आप एक छोटा सा कॉमा लगा लें। यहाँ एक सिचुएशन है, आम हालात में दो मर्द बुला लो। अब सेकंड चॉइस क्या है, सेकंड कंडीशन, अगर फाइलम यकूना रजुलैन, दो मर्द नहीं मिलते किसी मामले में विटनेस बनने के लिए, दो मर्द नहीं है, हमेशा नहीं होते, हर जगह भी नहीं होते, तो क्या करो, फरजुलुन, तो एक मर्द, वमरअतान, और दो औरतें। यहाँ क्या हुआ भला, तरह आप मुझे बताएंगे, आप क्या समझ रहे हैं? दो मर्द थे ना, किसी भी मुकदमे में गवाही और माली मामलात में गवाही में इस्लाम ने औरत के ऊपर बोझ नहीं डाला, वजह समझिएगा, दो मर्दों को रखा, क्योंकि माली मामलात पहले ही बड़े संजीदा होते हैं, फिर दूसरी बात है कि जब गवाहियों का मामला हो तो औरत का इंटेलेक्ट इतना काम नहीं करता जितने उसके इमोशंस काम करते हैं। ठीक है, तो दो मर्दों को रखो, और गवाही खास तौर पे अदालतों में जानी पड़े चोरों के खिलाफ, डाकुओं के, तो औरतें तो जाके वहां वैसे ही थ्रेट फील करेंगी, तो इसलिए आम हालात में क्या कहा, दो मर्दों को गवाह बना लो, दो नहीं मिलते तो फिर एक मर्द, और दूसरे एक मर्द की जगह दो औरतें, टोटल कितने लोग हो गए, तीन हो गए। मिम्मन तरदौना मिन शुहदा, उन औरतों को बुलाओ जिनको समझते हो क्योंकि वो गवाही देने के काबिल है, स्ट्रांग है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक दफा आप गवाही दे देते हैं और जरा तरस खा के आप कहते हैं नहीं 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 मैं वापस लेती हूँ, तो वो हो सकता है शख्स छूट जाए और आप जेल में चली जाए, फर्म होना पड़ता है। यानी स्ट्रांग औरतें जो अपनी बात पे पक्की हों, जिनको यकीन है जो हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, तो दो औरतों को, और जिन जो झूठी ना हो, चर्ब जुबान ना हो, बात ना बदल लें। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्या अल्लाह ने डिस्क्रिमिनेशन कर दी कि मर्द तो दो थे, तो जब औरतें आई तो एक मर्द की जगह दो आ गई, समझ आ रही है ना बात? तो अल्लाह ताला कहते हैं ये एक मर्द को रिप्लेस करने में दो औरतें क्यों है, अंत दिल इहदाहुमा, कि अगर भूल जाए इन दो में से कोई एक औरत, फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो याद करवा दे इसको दूसरी। अब जरा इसको समझ ले, ये है वो जुमला जिसके ऊपर लोग इस्लाम पे बड़ी ले दे करते हैं, और खास तौर पे विमेन लीग्स बना के फोरम्स में जाने वाली वो औरतें जिनको अपनी तालीम पे बड़ा मान है, जिनको अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत मान है, वो कहती हैं देखो जी, इस्लाम ने तो औरत को हकूक ही नहीं दिया, औरत को गवाही का हक ही नहीं दिया, हमारी गवाही अगर आधी है तो फिर जी हमारी नमाजें भी आधी कर दो, हमारे रोजे भी आधे कर दो। आपने तो शायद कभी सुना हो, इशू के ना सुना हो, नाम मेरी जुबान पे लेना नहीं चाहती, ऐसी ऐसी औरतें उन्होंने दुनिया में जाके बदनाम किया इस्लाम को, कि देखो ये मुसलमान औरत को गवाही का हक नहीं देते, और इस आयत की बुनियाद पर औरतों को दीन से बदगुमान किया जाता है कि ये तो जी मैस्कुलन रिलीजन है, फेमिनिन रिलीजन ही नहीं है। तो जरा ये देखिए कि गवाही को खाना, गवाही देना हक है या जिम्मेदारी है? ये कोई चॉकलेट है क्या? आपने मर्द को पूरा पकड़ा दिया, आपको आधा दे दिया, हाँ नहीं है ना? गवाही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गवाही ऐसे ही है, मैं आपको सिर्फ इस मिसाल को देने के लिए कि अगर अकल इस्तेमाल करें तो जिस बात पे लोग परेशान हैं उस पे खुश हो सकते हैं कि ये टेबल है, काफी हैवी है, मिसाल है। आपसे कहा जाता है कि इस टेबल को अब यहां से उठा के कल से उधर रख दें, और मैं कह नहीं रही आपको, करना दीजिएगा कल तक आने तक। कुछ लोग होते भी ऐसे। मिसाल है कि आपसे कहा जाए कि ये टेबल उठा के आपने उधर रखना है, चले पार्टी वाले दिन कुछ सेटअप करना है, या आपने ट्यूसडे को तकमील वाले दिन के लिए चेंजेस करनी है, तो मैं आपको कहती हूँ कि देखें ये टेबल हैवी है, आप अकेली ना उठाइएगा, बल्कि आप दो सिस्टर्स मिल लें। हाँ, अगर नीचे से ब्रदर एहसान आ जाए तो फिर एक भी उठा ले। तो बताइए, आपको चॉइस मिली कि आपके ऊपर बोझ पड़ा? आपको तो रिलैक्स किया कि भाई ये टेबल भारी है, एक मर्द तो उठा सकता है लेकिन एक औरत नहीं उठा सकती, तो औरत को तो अल्लाह ने रियायत दी। हकीकत है कि ये जो इक्वलिटी का बेस बनाकर औरत और मर्द को एक दूसरे के मुकाबले पे खड़ा किया, ये अन इस्लामिक बात है। इस पे तो हम सूरह निसा में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ इधर ये समझ लीजिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने औरत और मर्द को जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। हाँ, फिजिकली जिस तरह बीइंग अ ह्यूमन दोनों में बहुत फर्क है। मर्द की खूबसूरती क्या है? वो देव हो, स्ट्रांग, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, चकला, ये कहते हैं ना। जितना मर्द ऊंचा, लंबा, मजबूत, स्ट्रांग बॉडी का, आवाज में भारीपन हो, कहते हैं मर्द है ना। और औरत नाजुक, नरम, परी। औरत नरम अच्छी लगती है, नाजुक अच्छी लगती है। इसको ऑपोजिट करके देखिए कैसा फीलिंग आती है। मर्द की आवाज औरत वाली आवाज हो कैसी लगती है? अदाएं ऐसे हाथ हला हला के चले जैसे औरतें चलती, मर्द अच्छा नहीं लगेगा ना। हकीकी बात है। इसी तरह देखिए कि एक और फर्क जो मर्द और औरत में, वो क्या है कि मर्द का दिमाग ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप आज भी साइंस की जुबान में खोल के देखिए, मैं हमने रमजान में दिखाया था आपको, जब ब्रेन की दिखाई थी, मर्द का जो ब्रेन है ना वॉल्यूम वाइज ज्यादा होता है, हैवी होता है, औरत का छोटा होता है। लेकिन इसके बरक्स दिल में औरत के जो इमोशनल पार्ट है ना वो मर्द से बहुत ज्यादा है। औरत इमोशनल होती है, वजह अल्लाह ताला ने उससे तरबियत करानी है, और तरबियत दिमाग से नहीं होती, दिल से होती है। वरना कोई औरत गीले बिस्तर पे खुद सो के बच्चे को सूखे पे ना सुना दे, बाप नहीं कर सकते, वो तो सोच में पड़ जाएंगे कि करूँ क्या, मेरा तो वजू ना टूट जाए, इसको साफ करूँ कि ना करूँ, ये होगा कि नहीं होगा। जज्बात औरत में ज्यादा है, इमोशनल है, कच्ची होती है। औरत का वेट मर्द से कम होता है, क्यों नहीं लड़ते जाके आप डॉक्टरों से कि ये क्या आपने बोर्ड लगाया कि औरत को इतनी कैलोरीज चाहिए, मर्द को इतनी चाहिए, कितने डिस्क्रिमिनेटिंग है? कोई नहीं बोलता। खाने में देखिए, कद देखिए, औरत का कद छोटा होता है मर्द से, होता है ना। जब जिस्मानी तौर पे अल्लाह ताला ने रखा, और इसी तरह अल्लाह ने औरत को लाइबिलिटीज दी। औरत को घर में 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया, ये नहीं कहा कि 5ों नमाजें मस्जिद में जाओ, ये बोझ होता है। इस पर क्यों नहीं कोई औरत बोलती कि हमें हक दो कि नमाजें 5ों फर्ज करो, हम पे मस्जिद में जाए। महीने में 5-6 दिन औरत की छुट्टी करा दी। कभी कोई आपने किसी फोरम में आवाज सुनी कि देखो हमारी जन्नत के दुश्मन है क्या है, हमें नमाजें पढ़ने की इजाजत दो ताकि हम पढ़ें? मांगना है तो ये हक मांगिए, नेकियों का हक मांगिए। ये गैरों की जुबान से कुरान की और दीन की बातें सुन के ऐसी बातें कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत अदालतों में जाए, मुंह लगे किसी के, मर्दों में जाए, तो लिहाजा उसको कहा कि छुट्टी है। माशी जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली औरत पे? अपने बरस के पैसे गिन ले तो बड़ी बात है, इसने जाके दूसरी जगह क्या करना है? सच्ची जो बात है, इतनी जिरा करती हैं खवातीन, अपने मिजाज के एतबार से बड़ी जिरा वाली होती हैं। ये मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, जब भी एयरपोर्ट्स पे जाना आना होता है तो काउंटर्स पे हमेशा हम वो काउंटर चूज करते हैं जिसमें औरतें हों। और हमारा एक्सपीरियंस है कि जो मर्द बैठे होते हैं ना वो लेट टू गो, ओके फाइन, ठक ठक्का लगाए चले, औरतें पकड़ जाती हैं हमारी तरह, क्यों आए, क्या करेंगे, इधर क्या, वो क्या। यानी अपनी नहीं, दूसरों की भी कहानी, हम खड़े वो देख रहे होते हैं ना सब काउंटर्स पे क्या क्या चल रहा है, तो हम देखते हैं, हम हिसाब लगाते हैं, हम सारा बंदा इंजॉय करता है, तो हम देखते हैं कि ये औरत के काउंटर पे बंदा कितनी देर से खड़ा है, इतने में देखो उस मर्द ने 4 को फारिग कर दिया। तो औरतें जिरा करती हैं, इसमें क्या है? अब औरत जाए गवाही देने, वह जिरा करने पे आ गई, और वहां उसको किसी का कोई कपड़ा पसंद आ गया, उसकी सारी तवज्जो उधर चल पड़नी है, ये कहाँ से लिया था, ये कुर्सी कहाँ से ली थी, इसका फॉर्म कहाँ से, जज साहब जरा बताइए, अब क्या होगा। डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती है औरत, बात करती कहीं के जाती कहाँ है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बात नहीं है, कहता दूसरी है, क्या अब इसका ये इलाज है कि कि औरत के हाथों में बैनर पकड़वा के उसको बाहर किया जाए। परिंदा उड़ सकता है, इंसान नहीं उड़ सकता, तो क्या ये इंसान का ऐप है? तो गवाही ना देना औरत का ऐप नहीं है, औरत का हुसन है। अल्लाह सुब्हान तआला ने बात कर दी, और आगे हम पढ़ेंगे सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह तआला ने ये बात भी कह दी कि वो औरत है, ये झगड़े के वक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझा सकती, रोने ही लग जाती है बस। वो कहता है या रो लो या बात बताओ। वो साथ आंसू भी पोंछती जाती है, नाक भी साफ करती है, साथ कहती है बस मेरी बात सुनते नहीं, फिर बात शुरू से फिर वही शुरू कर देती है। तब वो मर्द तो इतनी चौड़ी लंबी बातें नहीं सुनते ना, तो इसलिए अल्लाह सुबहाना तला कहता है कि अगर एक मर्द से बदले में औरत चली जाए, एक के बदले में दूसरी, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अब एक सवाल ये है कि सिर्फ दो औरतें नहीं, अब एक मर्द फिर भी है, दूसरे मर्द की जगह है, दो औरतें हैं। ये नहीं है कि दो दो करके चार मर्दों को ले आओ। अब यहाँ एक छोटी सी और बात भी समझ लीजिए, और वो क्या है कि औरत के साथ अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि अंत दिल्ला इहदाहुमा व तुज़क्किरा इहदाहुमा लुखरा, कि अगर एक औरत भूलेगी तो दूसरी बताएगी, तो क्या मर्द नहीं भूल सकता? ये क्वेश्चन है इस आयत पे कि भूलने की बात औरत के साथ क्यों किया, क्या मर्द नहीं होता? तो इसका जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों के पास मौजूद है कि निसियान, भूलने की जो कैफियत है ना, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। पहले बात देखिए कि ये निस्यान की कुव्वत अल्लाह ने जो हमारे अंदर डाली है, ये क्यों डाली है? ये जो हमारे लिए नाम इंसान है ना, आपको रूट बताया था कि बास कहते हैं ये नसीया से है, भूलने वाला। अल्लाह सुबहाना तआला ने इंसान को जिंदगी में मुख्तलिफ चोटें लगानी होती हैं, हद से होते हैं, मौतें हो जाती हैं, कभी कोई हमें बुरा कह जाता है, कोई अच्छा कह देता है, कोई हमारी तारीफ कर देता है, कोई बुरा कह देता है। अब होता क्या है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि जब कोई चोट लगी उस वक्त थोड़ा सा रिएक्शन शो किया, एक दिन गुजरता है, फिर दूसरा गुजरता है, फिर तीसरे दिन के बाद सब्र आ जाता है। आप कह लीजिए कि ये जो भूलने का मादा है ना हमारे अंदर, ये एक सेफ्टी वॉल्व है। अल्लाह ताला हर आने वाले दिन में जो ठेस लगी होती है, जो एहसासात पे चोट पड़ी होती है, उसको ठंडा करके हमें भुला देता है। वरना वो शेर भी ना कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले अब मुझसे हाफजा मेरा। आप सोचिए कि हमें कोई दुख पहुंचे और हम उसको भूले ही नहीं आज तक, जिएंगे? एक औरत है, उसका बच्चा फौत हो गया, भूलेगी वो? नहीं भूलेगी ना। लेकिन हम खुद देखते हैं कि जो पहले दिन का गम होता है वो दूसरा नहीं, और 3 दिन के बाद तो बिल्कुल ऐसे जैसे ठहराव आ जाता है। तो ये भूलने का मादा अल्लाह ने इंसान में डालकर उसके जिंदगी के मामलों को आसान किया। औरत के जिस्म में भूलने का मादा ज्यादा होता है। औरत की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स, उसके एक जिस्मानी निस्वानी प्रॉब्लम्स होते हैं, बस आप देखिए पीरियड्स, डॉक्टर्स ने रिसर्च करके अब ये चीज़ देख ली कि औरत के जिस्म में जो पीरियड्स के दिन होते हैं उसके मिजाज में बहुत तगैयुर आता है, और उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है। प्रेगनेंसी, आपको पता है कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो कई किस्म की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, हत्ता के कुछ सिस्टर्स, यंग सिस्टर्स बात कर रही थी तो कहती जब मैं प्रेग्नेंट होती तो मुझे शुगर हो जाती है, फिर बाद में बच्चा हुआ तो बिल्कुल ठीक हो गई। हो जाता है ये, एक पॉसिबल, अंदर छुपी हुई चीजें बाहर आ जाती हैं। मीनोपॉज, जब आपके पीरियड्स खत्म होने के दिन है, ये सारे वो दिन हैं जिसमें औरत की मेमोरी लूज होती है। बच्चे के डिलीवरी के वक्त तो अगर औरत की मेमोरी लूज ना हो तो कभी अगला बच्चा ना पैदा करे, वल्लाही जितनी तकलीफ दे ये बात है। अल्लाह उस बच्चे के हाथ में आते ही वह औरत को सब भुलवा देता। तो ये तो एक रहमत की बात थी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि औरत को हम रिलैक्स करते हैं, उसकी सेहत का ये हाल है। अब देखिए जिस दौर में ये आयतें उतर रही थी कि अल्लाह के नबी डॉक्टर थे, हकीम थे, लेकिन ये बातें बताकर ये बात साबित कर दी गई कि अल्लाह का ये कुरान है, ये नबी की बात नहीं है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों को दुरुस्त रखना चाहिए। फिर इस पर एक पूरी रिपोर्ट है मौजूद कि पीरियड से पहले, पीरियड्स के दौरान और उसके बाद औरतों के मिजाज में क्या चेंजेस हैं। कभी आप इस पर एक बात ही जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उसको ही सोच लें कि पीरियड्स में तलाक देना हराम क्यों है। इसकी वजह ये कि औरत के अंदर चेंजेस आती हैं। मर्द को खास तौर पे नरमी का मामला करने का हुक्म दिया गया कि औरत जहनी तनाव से गुजरती है। कहते हैं कि 40% औरतें पीरियड के आने से पहले तकरीबन 10 दिन अपने जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियों से गुजरती हैं कि उनके अंदर खिंचाव, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तन्हाई, बात पे बात रोना आ जाता है। अब आप ना शुरू हो जाएं कि हमें नहीं था तब होना चाहिए, स्ट्रांग है तो शुक्र करें कि नहीं है, लेकिन इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं। तो ये होती है, और आप इस पे इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी को शौक है तो कर लो। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ ये बात करके हम सबको बता दिया कि एक औरत को अल्लाह तआला मुश्किल में नहीं डालता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये माली मामला है, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक औरत की गवाही भी काफ़ी है और मर्द की गवाही उसमें ली नहीं जाती, वो कौन से है? दूध पिलाना, रजात। एक औरत कह देना इस फलां बच्चे को मैंने दूध पिलाया या किसी और ने पिलाया है तो मान लिया जाएगा। नर्स कहती है कि हाँ मैं गवाही देती हूँ कि ये बच्चा इसी औरत का है। बाज दफा हॉस्पिटल्स में क्लैशेस हो जाते हैं ना, तो उसकी मानी जाएगी। इसी तरह कुछ मामला है जिसमें औरत और मर्द की गवाही बिल्कुल बराबर है। लियान, शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ एक खास अमल के बाद जुदा हो जाते हैं, उसको लियान कहते हैं। तो बहरहाल बात समझ आ चुकी होगी कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इस मामले को तुम इतना संजीदा ना लो, ये देखो कि अल्लाह तआला ने तुम्हें क्या कहा और तुम उस पर अमल करो।